गुरु शब्द गु गुरु इन दो अक्षरों के योग से बना है। गु का अर्थ है सत रज तम। इन तीन गुणों से परे रु का अर्थ है रूप रंग के बिना। इस तरह गुरु शब्द त्रिगुणातीत निराकार ब्रह्म का वाचक है। जो शिष्य को त्रिगुणातीत निराकार ब्रह्म ही बनाए वही गुरु हैं। महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिय, अत्रि ऋषि की आंख से पैदा होने वाले चंद्रमा की तरह ठंडक पहुंचाने वाले गुरु ही चार भुजाओं वाले विष्णु हैं। वही तीन आंखों वाले शिव हैं और वही चार मुखों वाले ब्रह्मा हैं। आध्यात्मिक विचार से जिनकी अंदर की आंखें खुली हों वे सदा अपने महान गुरु को सामने पाते हैं, परंतु जिनकी अंदर की आंखें बंद हों वो गुरु को पा नहीं सकते। जिस तरह अंधा उगते सूर्य को भी देख नहीं सकता, आशय यह है कि जिस तरह उगते सूर्य में कोई शक नहीं, उसी तरह गुरु की महानता में भी कोई शक नहीं। परंतु गुरु को समझने के लिए अंदर की आंखें चाहिए। शिव जी कहते हैं, हे प्यारी, गुरु महाराज जिस दिशा में रहते हैं प्रतिदिन उस दिशा में भक्ति पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। परम शिव स्वयं संसार रूप में प्रकट होते हैं और कभी संसार को अपने में लीन करते हैं। इन्हीं दो क्रियाओं को क्रमशः सृष्टि और प्रलय कहते हैं। संसार का सृजन और संहार परम शिव का नाटक है। गुरुओं में से श्रेष्ठ हमारा गुरु स्वयं शिव से अभिन्न होने के कारण इस नाटक का साक्षी है, इस नाटक को देखता रहता है। ऐसे महामहिम गुरु जिस दिशा में रहते हों हमेशा उस दिशा में नमस्कार करना चाहिए। मंत्र पढ़कर ताजा फूलों को जिन पर अभी भी भौंरे बैठे हों फेंकना चाहिए। अपने सद्गुरु के पास हम रोज जा न सकें तो भी सदा उनकी दिशा में सदा उनका नाम लेकर फूल डालने चाहिए जिससे उनकी पूजा हो। गुरुर्देवो जगत सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः गुरु परतरं नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरुं। इस सारी सृष्टि और सभी पदार्थों के मूल में एक ही तत्व है जिसके बिना और कुछ है ही नहीं। वेदांत इसे ब्रह्म और शैव दर्शन इसे परम शिव कहता है। विज्ञान इस तत्व को द्रव्य या ऊर्जा मानता है। इस शास्त्र में गुरु ब्रह्मा या परम शिव का ही रूप है। सर्वं श्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांताम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब वेदों के शिरोमणि आचार्य भी गुरु देव के चरणों पर नतमस्तक हो जाते हैं। वेदांत दर्शन तथा उपनिषदों में निहित आध्यात्मिक ज्ञान रूपी कमल को खिलाने वाला सूर्य गुरु ही है। अर्थात गुरु आध्यात्म विद्या का विस्तार करते हैं। गुरुदेव को मेरा नमस्कार हो। यस्मात् परतरं नान्यत् अस्ति किंचित् जगत्त्रये मनसा वचसा धीयः तस्मै श्री गुरुवे नमः। भू भुवा स्वा इन तीन लोकों में गुरु से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अतः मन से गुरु को ही ध्यान करना चाहिए और वाणी से उन्हीं का बखात करना चाहिए। गुरु को मेरा बार बार नमस्कार हो।
गुरुदेव प्रसादेर ब्रह्मा विष्णु हरा दिशु सामर्थ्यं प्राप्यते शिष्यैर मोक्षं तत्सेवया ध्रुवम्।
गुरुदेव की मेहरबानी हो तो शिष्य की पहुंच ब्रह्मा विष्णु और शिव तक हो सकती है। गुरु की सेवा से मोक्ष मिलना तो निश्चित ही है। आशय ये है कि यदि गुरु हम पर मेहरबान हो तो सभी देवता हम पर मेहरबान हो जाते हैं। सच्चे दिल से गुरु की सेवा की जाए तो गुरु के बताए रास्ते का अनुसरण करने से मुक्ति निश्चित ही है।
ज्ञानी कर्मी तथा योगी गुरुर गेयः सुख प्रदः त्रिभिहीनं त्यजेत दूरे मिथ्या ज्ञान प्रदर्शकम्।
वही गुरु सच्चे गुरु हैं और शिष्य को सुख पहुंचा सकते हैं जो स्वयं ज्ञानवान हो और शिष्यों को ज्ञान दे सकते हों, या जो स्वयं सच्चे कर्मयोगी हों, जो अष्टांग योग जानते हों और जो शिष्य को भी योग अभ्यास करा सकते हों। जिस गुरु में इन तीन बातों में से एक भी नहीं और जो ज्ञानी होने का ढोंग रचता है उसे दूर ही छोड़ना चाहिए, वो किसी काम का नहीं होता है।
यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं ज्ञान सेवधिदात्रे वै तस्मै श्री गुरुवे नमः।
उन गुरु को नमस्कार हो जिनको केवल याद करने से ही ज्ञान स्वयं पैदा होता है, जो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं और हमें भी ज्ञान दे सकते हैं।
देव किन्नर गंधर्वः पितृ यक्षाच चारणः मुनयोपि न जानन्ति गुरुषु श्रूणाविधिं ऋष्यो नाग सिद्धाश्च गुरु सेवा परामुखा महाहंकार संयुक्तः तपो विज्ञान बलान्वितः। संसार कुहुरावर्ते घटी यंत्रे यथा घटः उपयर्दः भ्रमन्ते ते मुचन्ते न भरवाणवात्।
स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग किन्नर, देवताओं के गवैये गंधर्व, पितर, यक्ष तथा चारण, ये सब गुरु की सेवा का तरीका नहीं जानते हैं। अपनी बड़ी तपस्या और विद्या के कारण सामर्थ्यवान ऋषि नाग और सिद्ध भी यदि अहंकार के कारण गुरु की सेवा न करें तो कभी संसार समुद्र से छुटकारा नहीं पाते हैं, अपितु संसार के काले गढ़े में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अरहत में गढ़े ऊपर नीचे घूमते रहते हैं।
ध्यानम सुनु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम् सर्वसौख्यकरम् चैव भक्ति मुक्ति प्रदायकम्।
शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, हे महादेवी सुनो, गुरु का ध्यान करने से सब प्रकार से आनंद मिलता है, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। गुरु का ध्यान करने से भक्ति मिलती है और फिर अंत में मोक्ष मिलता है।
स्वदैशिकस्य शरीर चिंतनम भवेत अनंतस्य शिवस्य चिंतनम सदैशिकस्य वच नाम कीर्तनम भवेत अनंतस्य शिवस्य कीर्तनम।
अपने गुरुदेव के शरीर का ध्यान करना ही अंतहीन शिव का ध्यान बन जाता है। अपने गुरुदेव का नाम
कीर्तन अनंत शिव का कीर्तन माना जाता है। भाव ये है कि अजर अमर शिव और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं। श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं भजामि, श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं स्मरामि, श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं नमामि। भक्त शिष्य कहता है, यदि मैं अपने गुरुदेव की प्रशंसा में कुछ कहता हूँ तो वो परम ब्रह्म की प्रशंसा बनती है, यदि मैं गुरुदेव की सेवा करूँ तो वही ब्रह्म की सेवा है, यदि मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करूँ तो वही ब्रह्म का स्मरण है, यदि मैं गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ तो वही परम ब्रह्म को नमस्कार है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम अस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। सद्गुरु ब्रह्मा स्वरूप होने के कारण आनंद स्वरूप है और अपने शिष्य को भी उस अपार आनंद की ओर लेने वाले हैं। वो ज्ञान स्वरूप है, इस सारे ब्रह्मांड में वही एक आकाश की तरह फैले हुए नित्य रहने वाले सर्वव्यापक तत्व हैं, उनके सिवा और कुछ नहीं। सुख दुख पाप पुण्य आदि द्वंद्वों से गुरु परे हैं। वेदांत आदि आध्यात्मिक शास्त्र में जीव में कहा जाता है, तुम वही ब्रह्मा हो, ऐसे वाक्य में लक्ष्य ब्रह्म स्वरूप गुरु ही है। आनंदम आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम इंजम भवरोग वैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यम अहम् नमामि। मेरे सद्गुरु ने अपने आप को अच्छी तरह जान लिया है, वे ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और अपने शिष्य को भी आनंद की तरफ लेने वाले हैं। वे सदा प्रसन्न हैं, वे योगियों में श्रेष्ठ हैं, अतः सब उनको प्रणाम करते हैं। वे संसार रूपी बीमारी के वैद्य हैं, अर्थात उनकी कृपा से शिष्य का संसार में आना जाना छूटता है। ऐसे सद्गुरु को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। हृदम्बुजे कर्णिका मध्य संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्तिम ध्यायेद गुरुं चंद्र कलावतंसम सच्चित सुखाभीष्ट वरं ददानम। शिवजी महाराज कहते हैं, शिष्य अपने हृदय को कमल समझे और ध्यान करे, उस कमल की कर्णिका के मध्य में गुरु महाराज का सिंहासन बिछा है, उस पर दिव्य शरीरधारी गुरु जी विराजमान हैं, उनके सिर पर चंद्रकला सोहती है। वो शिष्य को ऐसा वरदान देते हैं कि शिष्य नित्य परम सुख का अनुभव करता रहता है।
श्वेतांबरम श्वेत विलेप पुष्पम मुक्ता विभूषम मुदितम द्विनेत्रम वामांग पीठे स्थित दिव्य शक्तिम मंदस्मतम शांति कृपा निधानम।
शिष्य के हृदय कमल पर विराजमान गुरु सफेद कपड़े धारण किए हुए हैं, सफेद अंगराग मलने से उनका शरीर सफेद फूल की तरह सुंदर है, उनकी दो आंखें हैं, वे प्रसन्न चित्त हैं और मोतियों की लड़ियां उनके बदन पर सोहती हैं, उनके बाम बाग में दिव्य शक्ति का निवास है, उनके होठों पर मंद मुस्कान है और वे शांतिपूर्ण हैं, वे दया के सागर हैं।
यस्मिन् सृष्टि स्थिति ध्वंस पिधानानुग्रहात्मकम् कृत्य सत्यं पञ्चविधं शश्वत् भासते तं नमाम्यहम्।
यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस विधानानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शश्वत् भासते तं नमाम्यहम्।
शैव दर्शन के अनुसार परम शिव सृष्टि अर्थात संसार रूप में प्रकट होना, स्थिति अर्थात संसार को वर्तमान रूप में टिकाना, ध्वंस अर्थात संसार को अपने में लीन करना, पिधान अर्थात जीवों को मोह में डालकर उन्हें सच्चाई से दूर रखना, तथा अनुग्रह अर्थात दया करके जीव को ज्ञान देना, इन पांच कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। सद्गुरु परम शिव से अभिन्न हैं, अतः गुरु ही इन पांच कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। गुरुदेव को मेरा नमस्कार हो।
यत् पादरेणुभिर्नित्यं भक्ता संसारवारिधेः सेतुं बध्नन्ति वै सम्यक् दैशिकं तं उपास्महे।
जैसे समुद्र को पार करना बहुत कठिन है, इसी तरह संसार को पार करना अर्थात संसार के आवागमन से छुटकारा पाना कठिन है, अतएव संसार को सागर माना जाता है। इसी संसार रूपी समुद्र का सेतु बांधने को मिट्टी चाहिए। गुरु भक्त लोग अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल से ये हमेशा बांधते हैं।
आशय ये है कि प्रत्येक युग में भक्त लोग गुरु की दया से ही भवसागर को पार कर सकते हैं। ऐसे सामर्थ्य रखने वाले गुरु महाराज की हम उपासना करते हैं।
प्रातः शिरसि शुक्लेब्जे दुनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयकरं शांतं सम्रेतं भावपूरकं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चित् आनंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्।
गुरु साक्षात ब्रह्म है, वे भूत भविष्य वर्तमान इन तीन कालों में रहते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, उन पर माया से कोई लेप नहीं चढ़ता, वे विशुद्ध हैं। गुरु ही वास्तविक सत्ता है, वे आभास मात्र नहीं है, वे हमेशा अपने ज्ञान स्वरूप में रहते हैं। मनोविज्ञान का नियम है कि हमें स्थूल में सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। हमारे ध्यान में वो चीजें आती हैं जिनको या जिनके अवयवों को हमने देखा है, अतः शिष्य के लिए आसान है। तो वो साधना की पहली सीढ़ी में मनुष्य शरीरधारी गुरु का चिंतन करे, जब उसका ध्यान स्थिर हो जाए तो उसे स्वयं निराकार गुरु के सूक्ष्म रूप का आभास होने लगता है। मस्तिष्क यंत्र से हजारों नसें आती हैं जो शरीर के अणु अणु तक संदेश पहुंचाती हैं और वहां से संदेश लाती हैं। अतः मस्तिष्क को सहस्त्र दल कमल का स्थान कहें तो कोई गलत बात नहीं हो।
यदा स्थितं च संसार वृक्ष बीजं अनश्वरं ब्रह्मरंध्रसिताम्भोज मध्यस्थं चंद्रमंडलं आकाशे दिव्यरेखात सहस्रदलमंडिते हंस रूपे त्रिकोणे चस्मरे तम मज्जतो गुरुम।
वृक्ष पैदा होने से पहले भी अपने बीज में सूक्ष्म रूप में मौजूद होता है, मौजूद न हो तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता। स संसार रूपी वृक्ष उत्पत्ति से पहले भी अपने बीज के रूप में रहता है। ब्रह्म और गुरु का कोई भेद नहीं, अतः दृश्यमान संसार उत्पत्ति से पहले गुरु रूप में रहता है और इस तरह गुरु अपने विशुद्ध सूक्ष्म बीज रूप में भी रहते हैं और संसार में भी वे अनश्वर हैं। इस सारे संसार का बीज ब्रह्म है, वो न कभी पैदा होता है और न उसका विनाश कभी हो सकता है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। सकल भुवन दृष्टि कल्पिता शेष दृष्टि अक्षगण परमेष्टि तत्परार्थक दृष्टि निखिल शमन दृष्टि संपदाश्रयक दृष्टि भवगण परमेष्टि मेरु सारक दृष्टि। उपरोक्त ढंग से जब साधक शिष्य अपने सस्रार चक्र में ब्रह्म स्वरूप गुरु का स्मरण करता है तो उसकी नजर खुल जाती है। एक जगह बैठे बैठे ही वो देख सकता है कि सारे भुवनों में क्या कुछ हो रहा है, उसको दृष्टि पूरी हो जाती है। जहां तक उसकी नजर जाती है उसके आगे कुछ है ही नहीं, वो अपनी सारी इंद्रियों पर काबू पा लेता है। न गुरुर अधिकम न गुरुर अधिकः न गुरुर अधिकम न गुरुर अधिकः मम शास्नतो मम शास्नतः मम शास्नतो मम शास्नतः। इस प्रकार गुरु का साक्षात्कार करके शिष्य कहता है गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है, गुरु से बढ़कर और कोई व्यक्ति नहीं है, अर्थात गुरु के सिवा इस विश्व में और कुछ भी नहीं है, तो उससे बढ़कर न कोई चीज है और न कोई व्यक्ति। शिष्य साधना की ऊंची सीढ़ी पर पहुंचकर अपने सिवा केवल ब्रह्म को पाता है। धीरे धीरे वो स्वयं भी उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है और ब्रह्मा से एक होकर रमता है। इदम एव शिवम अयमेव शिवा इदम एव शिवम अयमेव शिवा शिवशास्नतः 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 शिवशास्नतः। शिवरूप गुरु के साक्षात्कार से शिष्य कहता है इस प्रकार का अनुभव ही सबसे बड़ा कल्याण है। आज मैंने सचमुच शिव का साक्षात्कार किया, मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये सचमुच शिव ही बोल रहे हैं, ये सब बातें बिल्कुल सत्य हैं।